ओम शांति। एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है 13 जनवरी 78। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति क्या है? पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति क्या है? तो पहले हम बाबा का उत्तर पढ़ेंगे और फिर अपना कुछ चिंतन करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान सुख शांति आनंद है, वे सर्व गुण हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है और नशे में सब भूल जाता है। कोई स्मृति नहीं होती। एक स्मृति रहे, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा, और निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। तो ये बाबा का आंसर था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति क्या है? तो बाबा कह रहे हैं, सदैव नशे में रहो, कौन से, कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। दूसरा, जो बाप का खजाना ज्ञान सुख शांति आनंद है, वे सर्व गुण हमारे हैं अथवा खजाने हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है ना। कोई स्मृति नहीं होती। एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। कौन सी स्मृति से? बाप और मैं। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। तो प्रश्न ये था कि पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति क्या है? तो सर्वप्रथम तो पहले हमको जो पुरानी दुनिया के आकर्षण हैं, उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से आकर्षण है। फिर उनसे छूटने की युक्ति क्या है, उनको भूलने की युक्ति क्या है। तो पुरानी दुनिया के आकर्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला आकर्षण कौन सा है? सबसे पहले स्वयं के देह का आकर्षण है। क्यों आकर्षण है? 63+21 84 जन्मों का आकर्षण है। क्योंकि देह बांध तो सतयुग से चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तो चालू हो जाता है। मैं लक्ष्मी हूं, नारायण हूं, ये भी तो स्मृति रहेगी ना। अगर देवान बा नहीं है तो पता ही नहीं होगा मैं लक्ष्मी नारायण हूं, फिर कैसे कहेंगे। तो देवान तो वास्तव में परम धाम से उतरे हम, तो वहां से डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाती है। केवल परम धाम की अवस्था है जहां देवान से बिल्कुल मुक्त हैं। तो सबसे पहले तो देह का भान, ये आकर्षण है। फिर दूसरा है देह का अभिमान, ये होता है आरंभ कहां से? द्वापर युग से चालू होता है। तो इतने जन्मों का देहभान, देह अभिमान कि इतनी परतें जो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई हैं, और उन परतों से बाहर निकलना, अर्थात 84 फाइलें ऊपर रखी हैं और आत्मा बिल्कुल नीचे है, और उसको साइड करके ऊपर निकलना, कितनी बड़ी ताकत चाहिए। तो पहले तो हमको ये महसूसता होनी चाहिए कि हमको देह भान अथवा देह अभिमान है। स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें आकर्षण है, हम आकर्षणों की जंजीरों में बंधे हुए हैं, अनेक प्रकार के आकर्षणों में फंसे हुए हैं। तो ये पहला आकर्षण है स्वयं की देह का आकर्षण। फिर दूसरा आकर्षण देह के संबंधों का आकर्षण। देह के जितने भी संबंध हैं, एक है हम इसी परिवार से जिससे हम बिलोंग करते हैं, उनका आकर्षण है। लेकिन अनेक परिवार हमने भोगे हुए हैं, उनके साथ हम रहे हुए हैं, तो उनका भी आकर्षण है। किसी न किसी रूप में कहीं हमारे सामने आते हैं तो किसी को देखते हुए विशेष लगाव पैदा हो जाता है। सबको देखते हुए नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा हिसाब किताब तो 84 जन्मों में रहा हुआ है, तो कितने प्रकार के आकर्षण हमारे साथ रहेंगे, और एक ही फैमिली के कितने लोग होंगे, और आकर्षण भी दो प्रकार के हैं। एक तो है पॉजिटिव आकर्षण, दूसरा नेगेटिव, शत्रुता का भी आकर्षण है। किसी को देखते ही खून खौल उठता है तो वो भी एक आकर्षण है। तो ये भी आकर्षण है, देह के संबंधों का आकर्षण बार बार खींचता है। तो ये भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि देह के संबंधों का भी आकर्षण है। और तीसरा आकर्षण देह के पदार्थों का, संसाधनों का, क्योंकि बिना पदार्थों के जीवन जीना मुश्किल है। वस्तु व्यक्ति तो है ही, वस्तु संसाधन जितने भी हैं उसके बिना जीना जो है मुश्किल हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसने हमारे मन को बांध के रखा हुआ है, हमारा मन बार बार वहां जाता है? कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनके बिना जीना हम मुश्किल समझते हैं? तो उन संसाधनों के भी प्रति हमारा कैसे वैराग्य उत्पन्न हो, या जो आकर्षण है पहले तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर वैराग्य बाद में पैदा होगा। पहले हम स्वीकार करेंगे, महसूस करेंगे कि सचमुच ये आकर्षण अभी तक हमारे में है। और चौथा आकर्षण, तीन आकर्षण हुए, एक तो स्वयं की देह का आकर्षण, देह के संबंधों का आकर्षण, देह के पदार्थों का आकर्षण, इसके बाद पैसे का आकर्षण भी है, मनी वो भी आकर्षण है। और कौन से आकर्षण है? भक्ति का आकर्षण भी कितना है, क्योंकि भक्ति भी तो हमने बहुत की ना, भगवान को याद करते करते कितने मठों का चक्कर लगाया है, कितनी मालाएं फेरी हैं, तो भक्ति का भी आकर्षण है। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी उसी भक्ति को तो नहीं पकड़ के रखा हुआ, अर्थात वही मांगने की आदत नहीं पड़ी है, वही अपने अंदर हीन भावना तो नहीं भर के रखी है कि बाबा हमको इतने इतने ऊंचे सम्मान देते हैं और हम हैं कि मानते नहीं है, हम भाई तेरे चरणों के धूल है, या बाबा मेरा ये काम कर दो तो आप मेरी सहायता कर दो, मुझे शक्ति दे दो, सुख दे दो, अभी भी मांग तो नहीं रहे हैं। जबकि बाबा ने जन्म देते अपनी सर्व शक्तियां, ज्ञान खून के जानने शक्तियां सब हमको समर्पित कर दिए, विल कर दिए, अधिकार के रूप में हमको दे दिए, लेकिन फिर भी हमने भक्ति की जंजीरों में तो हम बंद कर नहीं रखे हुए बैठे हुए, उसी आकर्षण की चकाचौंध में तो नहीं फंसे हुए हैं। तो ये क्या आकर्षण है? भक्ति का आकर्षण। और नेक्स्ट पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुराना आदतें, जो भी पुरानी आदतें हैं इस ब्राह्मण जन्म से पहले, जो कि हमारे में अनेक प्रकार की आदतें थी, जो कौन कौन सी, जैसे कि कौन कौन से संस्कार हैं, कौन कौन सी आदतें होंगी? यहां जैसे बाबा ने कहा बाप और मैं, इस स्मृति में रहेंगे तो नशा रहेगा। तो एक को छोड़कर अगर दूसरे को, दूसरे के प्रति जो हमारी आकर्षण की आदत पड़ी हुई है, संस्कार पड़े हुए हैं, ना चाहते भी हम देखते हैं, अनासक्त होने के बजाय आसक्ति है। जैसे हम मान लीजिए बाजार में जाते हैं तो कई चीजें हमको खरीदनी नहीं होती हैं, लेकिन बिना मतलब के हम देखते रहते हैं, कोई चीज नहीं खरीदनी है, ये जैकेट कहाँ से लाए, कितने की लाए, पहनी हुई है, जबकि हमको लेना देना नहीं उसे, हमको पता हमारे में इतना सामर्थ्य भी नहीं जो हम इसको ले सके, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं ये जूते कहाँ से आए, ये कपड़े कहाँ से लाए, सामर्थ्य आ जाए तो बाद में खरीद सकते हैं। लेकिन अभी बाबा ने कहा कि इन सर्व आकर्षणों से मुक्त होने का टाइम है, अभी समेटने का टाइम है, विस्तार करने का टाइम नहीं। इसलिए तो कौन कौन से ऐसे आकर्षण है, आदतें हैं जो अनावश्यक रूप से हमने फिर भी पकड़ के रखा हुआ है? तो एक आकर्षण हो गया देह के संस्कारों का आकर्षण, देह की आदतों का आकर्षण। और कौन सा आकर्षण हो सकता है? मांगने का आकर्षण। हाँ, भक्ति में मांगते रहे तो ये भी मांगने का आकर्षण, जन्मभूमि, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। देह के स्थान का आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जिस स्थान में हम रहते हैं लौकिक घर में वहां तो रहना ही है, लेकिन उसी कमरे से हमारी आसक्ति तो नहीं है, या कहीं ऑफिस में काम करते हैं उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं तो उसी आकर्षण में तो नहीं बंधे हुए हैं, या कहीं हमारा ऑफिस चेंज हो जाए या स्थान चेंज हो जाए, या फिर प्रकृति का भी आकर्षण है, प्रकृति के आकर्षण में तो नहीं बंधे हुए हैं। तो इन आकर्षणों से भी मुक्त होना है, क्योंकि स्थान का आकर्षण बहुत जबरदस्त होता है। अगर बाहर जाते हैं तो किसी खटिया पर नींद ही नहीं आती किसी को, अपने घर में आती है। तो वो भी हमको देखना है कि कौन कौन से इस तरह के स्थान के आकर्षण भी हम जो है जीने को विवश हैं, मजबूर हैं। और कौन सा आकर्षण हो सकता है? खाद्य पदार्थों का। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण आकर्षण है। तो कहते ना, दो चीजें अगर खाली हैं तो हमारा योग ठीक लग सकता है, कौन सा? पेट और दिमाग। ये दो चीजें खाली होंगी, अर्थात दिमाग खाली माना ज्ञान से खाली नहीं, अज्ञान से खाली, और पेट पेट वो वाली चीजें उसके अंदर ना डाले जो हमारे योग को बाधित करें, ज्ञान को बाधित करें। जैसे कल बाबा ने कहा ना, ज्ञान योग में तुम्हें तत्पर रहना है, क्योंकि ज्ञान और योग ये हमारे कवच हैं। योग कवच है तो ज्ञान तीर है, जो कल बता रहे थे ना डॉक्टर श्रीमंत क्लास में, तो योग जो है वो कवच है, हमारा ढाल है, लेकिन ज्ञान उससे भी पावरफुल तीर है, क्योंकि योग तो कवच पहना हो लेकिन ज्ञान का बाण हम दूर से मार के माया को भगा सकते हैं। तो ये कुछ आकर्षण थे। अब इनसे छूटने की युक्तियां क्या है, जो आकर्षण है इनसे छूटने की युक्तियां क्या है? कहा जाता है लोहे को लोहाई काटता है। अब हम आकर्षण को, अनेक प्रकार के जो आकर्षण है उनको समाप्त करने के लिए दूसरे आकर्षण तैयार करने पड़ेंगे। कौन कौन से? हाँ, ज्ञान का श्रवण। और तो इस बाबा ने इस प्रश्न में बताया कि जो खजाने हैं बाबा के, अनेक प्रकार के खजाने हैं जिन खजानों के तुम मालिक हो, अगर ये बुद्धि में रहते हैं, इनको हम अपना बना लेते हैं, तो स्वतः ही हमारा संसार की तरफ से पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, वहां से हमारा आकर्षण समाप्त होता जाएगा। तो कुछ नए आकर्षण हमको क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ स्मृतियां रखनी पड़ेंगी बुद्धि में, जिनसे हमारा जो बुद्धि होगा पुरानी दुनिया से हटकर नई दुनिया की तरफ, अपने घर की तरफ चला जाए। तो सबसे पहले तो हमको स्मृति चाहिए कि ये समय कौन सा चल रहा है। ये समय जो है विनाश का समय चल रहा है, इसलिए अंतिम समय में इस गाना ना, एक अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, समय बीतता जा रहा है। तो ये जो है समय कौन सा चल रहा है, जिस समय में हमको सब कुछ समेटना है, ये स्मृति रहनी चाहिए कि अंतिम समय है, समय बीतता जा रहा है, हर पल निकलता जा रहा है, भाग रहा है समय, समय पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि मेरे रचता कहां पहुंचे हैं, रचना समय आगे जा रहा है और रचता पीछे जा रहे हैं। तो हम खुद को हमको शर्म आनी चाहिए कि हमको जो रचना है हमारी वो आगे जा रही है और रास्ता पीछे। लेकिन कल तो वैसे बाबा ने कहा था परसों के छोटों को आगे रखना है ना, लेकिन समय छोटा नहीं है, समय तो बड़ा ही है, समय बड़ा बलवान है। अगर हम समय को बर्बाद करते तो समय हमें बर्बाद कर देगा, समय छोटे बड़े को नहीं देखेगा। तो एक तो हमको ये स्मृति रहे कि समय कौन सा चल रहा है, और दूसरा कल्प कल्प की बाजी है, कल की मुरली में था ना कल्प कल्प की बाजी है, इसलिए क्या करना है उसको, उसके आगे वाला सेंटेंस क्या था, एक सेकंड भी खोना नहीं है और गवाना नहीं है, इसमें गवाना नहीं है, कल की मुरली में था। और हाँ जी, जन्म, हाँ जन्म जन्म की बाजी है, तुम्हें पूरी तरह श्रीमत पर चलना है अभी, क्योंकि ये बाजी हाथ से निकल गई तो सारा कल्प निकल जाएगा, अगले कल्प में भी हाथ में नहीं आएगी। अभी अभी जो भी करना है काम उसे आज अभी कर डालो। दूसरा हमको स्मृति रहनी चाहिए लौटने का टाइम है, घर लौटने का टाइम है। जब हमको स्मृति रहती है तो नेचुरली हमारा बुद्धि योग वहां लग जाता है। बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया क्या है, जड़ जड़ी भूत हो चुकी है, इसमें कोई सार नहीं है। अगर हम इसी दुनिया में उसी का चिंतन करते रहेंगे तो हमारा जो है ज्ञान योग की तरफ हमारा अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा। तो भी स्मृति चाहिए कि अब हमको वापस लौटना है, बहुत रह लिए, अब ड्रामा ये पूरा होने जा रहा है, इसलिए गाना है ना अब घर जाना है। तो दिन में तो दो बार सोने लेना चाहिए, बाहर नहीं कान में डाल के, ऐसा नहीं अमृत वेले सवेरे सवेरे लगा दो और घर जाना है तो बाद में दिन में हमको कोई भेज ही दे फिर इसलिए वो गाना बहुत अच्छा है। पुराने गाने जो बहुत अच्छे हैं, हम शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए थे तो पुराने गाने बहुत सुनते थे, तो अभी फिर से सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब नए नए आते तो बहुत नशा चढ़ता है, क्योंकि वो जो गाने होते हैं वो गाने तो पहले हमने सुने नहीं होते हैं, लेकिन बाद में सुनने के बाद धीरे 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 वो सुन सुन के सुन हो जाते हैं। तो वो गाने भी सुनने चाहिए वास्तव में बीच बीच, क्योंकि गीत जो है वास्तव में मन बुद्धि को एकाग्र करने का एक बहुत सार्थक माध्यम है। अगर हम बार बार गीत सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं तो वो एक हमारे संस्कारों में चले जाते हैं, और वास्तव में बोल भी हमारे उसी अनुरूप निकलते हैं। तो एक हमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि अब हमको घर वापस लौटना है, और दूसरी स्मृति कि अब ये ड्रामा पूरा होने जा रहा है, इस ड्रामा में हमारा पार्ट पूरा हो रहा है, अब हमको नया पार्ट प्ले करना, नया पार्ट शुरू करना है। अब हमारा घर जो है इंतजार कर रहा है, कौन सा घर, परमधाम घर इंतजार कर रहा है, वो हमें पुकार रहा है, हमारी राह देख रहा है। तो लंबे समय तक परमधाम में टिकने का भी अभ्यास करना है, जिसके लिए बाबा ने अनेक प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, आशरीरी अवस्था, बीज रूप अवस्था, उसका अभ्यास करना है, या परम धाम में जितना समय हम रह सके योग के विभिन्न भिन्न भिन्न प्रयोग करने हैं। और ये भी याद रहना कि हम थोड़ी देर के मेहमान हैं, अभी मेहमान के यहाँ किसी से लगाव नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होती, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है वो थोड़े समय के लिए, लेकिन आजकल के मेहमान हैं वो थोड़ा अट्रैक्शन हो ही जाता है। बड़ा मुश्किल से निकलते हैं घर से, और क्योंकि आजकल संसार में महंगाई भी इतनी है तो अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, लेकिन हम आत्माएं इस देह में मेहमान हैं, इस संसार में मेहमान हैं, जहां हम घर में रहते हैं वहां भी टेम्परेरी मेहमान हैं, थोड़ी देर के मेहमान हैं, इसलिए वापस लौटना है। मेहमान का यहां कोई अपना नहीं है, उसको वापस अपने घर की स्मृति रहती है कि मेरा अब टाइम पूरा हो चुका है, अब मेरे लौटने का टाइम आ गया है। तो ये भी हमको स्मृति रखनी है कि मैं मेहमान हूं। और बाबा ने साथ में इसमें कहा कि खजानों को याद रखो, क्योंकि जो अविनाशी खजाने हैं, जब आत्मा अविनाशी है तो अविनाशी खजानों की जब प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसको रस आएगा, उसमें उसको ज्ञान योग में इंटरेस्ट आएगा। तो कौन कौन से बाबा ने हमको खजाने दिए वो भी हमको स्मृति रहनी चाहिए। तो कौन से खजाने दिए हैं? वैसे तो अनेकों खजाने हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 खजानों का गायन होता है। कौन कौन से? ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, संतुष्टता, खुशी, दुआएं, समय, संकल्प। 9 हो गए कि 10 हो गए? चल 9 हो गए, 9 ही हो गए, 10 नहीं, 8 नहीं हुए है? पवित्रता हो गया। ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, दुआएं, खुशी, समय, संतुष्टता और संकल्प। एक उससे भी महत्वपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, और एक उससे भी महत्वपूर्ण खजाना है, वो नहीं है तो एक खजाने नहीं है, संतुष्टता भी खजाना है, है? संतुष्टता भी है। लेकिन इन सब खजानों से एक और बड़ा खजाना है, अगर वो नहीं है तो एक खजाने नहीं है, कौन सा है? स्वयं परमात्मा खजाना है। अगर वो नहीं है तो एक खजाने कहां से मिलेंगे? तो ये खजानों की वो चाबी है। तो ये खजाने अगर हमारी स्मृति में रहते हैं और इन खजानों का अगर हम चिंतन करते हैं, क्योंकि हमको बताया ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो नया अट्रैक्शन, नए एक आकर्षण के साधन तैयार करने पड़ेंगे जिससे आत्मा इस बॉडी से डिटैच हो जाए। तो ये जो हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो वास्तव में सारे ज्ञान का चिंतन शरीर से डिटैच होने का ही है। जितना ज्ञान में इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, तो उतना समय हमारा अपने शरीर के प्रति ध्यान कम ही रहता है, और उसी अनुपात में फिर हमारा वैराग्य भी बढ़ता जाता है। वैराग्य को वास्तव में कोई ऐसा नहीं कि अपने आप ही एकदम मैं सोचा मैं बहुत वैराग्य हूं, ऐसे वैराग्य नहीं होगा। ज्ञान का हम जितना चिंतन करते जाएंगे तो वैराग्य स्वतः ही हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो कौन कौन सा हमको ज्ञान मिला है वो हमको स्मृति रहनी चाहिए, है ना? तो ज्ञान के ऐसे हम अपने चिंतन की तहत अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन सा ज्ञान हमको मिला है, इस ज्ञान प्राप्ति के बाद हमको जीवन में, हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, हमने इस जीवन में कितनी खुशी प्राप्त की है, इस ज्ञान से हमारे जीवन में कितने संबंधों में मधुरता आई है, हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आया है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो ज्ञान से रिलेटेड बाबा ने कौन कौन सा ज्ञान दिया है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, सबसे पहले हमें स्वयं का, आत्मा का ज्ञान दिया है। हालांकि संसार में आत्मा तो जानते हैं लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है उनको, है ना? किसी को भी अगर गाइड करते हैं, ज्ञान समझाते, तो कौन नहीं जानता आत्मा? तो सब जानते हैं आत्मा है शरीर के अंदर, लेकिन अनुभूति नहीं है। बाबा ने हमारे लिए अनुभूति का मार्ग खोल दिया, कितना सहज रूप से खोल दिया कि जितना हम उसका ज्ञान का चिंतन करते जाते हैं तो वो आत्म अनुभूति अपने आप होती रहती है। क्योंकि जो ज्ञान है ये आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है, शक्तिशाली संकल्प है, जो आत्मा के मजून है, आत्मा के लिए तंदुरुस्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। तो ज्ञान का हम कितना चिंतन करते हैं। दूसरा खजाना गुण, कौन कौन से गुण हैं? इसमें बाबा ने कहा ना क्वेश्चन आंसर में कि दो आपके लक्ष्य जो हमेशा नशा रहे, उस नशा अगर रहेगा तो निशाना भी रहेगा। कौन सा निशाना बताया? फरिश्तापन और देवतापन का। तो फरिश्तों के क्या गुण हैं और देवताओं के क्या गुण हैं, उनका अगर हम चिंतन करते हैं, जैसे कल संडे की परसों संडे की मुरली में था ना, रियलिटी की रियलिटी वालों के दो गुण थे, कौन से थे? हर्षित्मकता और स्वच्छता। तो ऐसे ही हमारे जो देवताएं गुण हैं, कौन कौन से देवताएं गुण हैं, तो सारे दिन हम उसका चिंतन कर सकते हैं। देवताएं हर्षित मूर्त होते हैं, और क्या होते हैं? 36 गुण। कौन कौन से? जो बाल लिस्ट लगी है वहां पढ़ सकते हैं, है ना? अथक, अंतर्मुखता, आत्मविश्वास, हाँ जी, यथार्थ लास्ट में। ऐसे याद करने का तरीका अ आ ई ऊ ए बी, माने अल्फाबेटिकली करेंगे तो याद सहज होगा। अ के 5 है, अथक, अंतर्मुखता, आत्मविश्वास, आज्ञाकारी, नम्रता, नहीं, अ के 5 ऐसे, हाँ, फिर ना के भी 5-6 है, नम्रता, निर्भयता, निश्चिंतता, नियमितता, न्यारापन या ऐसे यथार्थरा रहम दिल, ऐसे अलग अलग हैं। पवित्रता, परोपकारिता, उदारता अलग अलग हैं, ऐसे सहनशीलता, स्नेह, संतुष्टता, निश्चिंतता हो गया नाम है आगे, हाँ निश्चिंतता, अनुशासन, हाँ एक अनुशासन है आगे पांच में। तो इस तरह अपने मन बुद्धि का चिंतन करेंगे तो हमारा मन बुद्धि बिजी रहेगा और स्वतः पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त होते जाएंगे। तो ये दूसरे खजाने के कौन कौन से गुण हमारी बुद्धि में पहले तो याद रहने चाहिए, तभी तो हमारे में आएंगे। तो आज की मुरली में भी है ना शायद, या इसी में है कि कहां पढ़ा कि मुरली को हम जितना पढ़ते जाएंगे तो मुरली एक संसार के अट्रैक्शन से, आकर्षण होने से मुक्त होने का एक सहज माध्यम है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं करें। तीसरा खजाना शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां हमारे में समाई हैं और कौन कौन सी नहीं है और कौन कौन सी हमको याद है ना। विशेष रूप से अष्ट शक्तियां बाबा बताते हैं, कौन कौन सी अष्ट शक्तियां हैं, हाँ दो, सहनशीलता, सहयोग, सामना करने की, समेटने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, हाँ एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, ऐसे सत्यता की शक्ति, फिर संग्रहण करने की शक्ति, संग्राम करने की शक्ति, हाँ संग्राम करने की शक्ति भी है, एक माया से संग्राम तो करना पड़ता है, जो गोस्त रूपी माया तूफान लेकर आता है तो उससे संग्राम करने के लिए पहले से हमको शक्तिशाली होना पड़ेगा ना। तो ऐसे कौन कौन सी शक्तियां, उसने बताया था 60 शक्तियां निकाली है, तो ऐसे हम शक्तियां देख सकते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा चक्कर लगाती रहे, उनकी स्मृति रखनी है। अगर हम विस्मृत हो जाएंगे तो वो शक्तियां भी उसी अनुपात में काम करेंगी, बुद्धि में रहेगी माना अपने आप काम करेंगी, वो बुद्धि में नहीं है तो काम कैसे करेंगी। हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं लेकिन कहाँ रखे हैं पता ही नहीं है, तो दुश्मन तो उसमें पर आके अटैक कर देगा ना। बोले जितने भी कॉस्टली हों, जितने भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र हों, अगर उनको पता ही नहीं है, नहीं चलाना तो है ही है वो तो, लेकिन अगर पता ही नहीं हमने रखे कहाँ है, फिर उसके बाद चलाना आना चाहिए। स्लोगन कौन सा आज का, कौन सा स्लोगन था आज का, बुद्धि के तरकश में ज्ञान के बाण भरकर रखो तो दुश्मन ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये था कि शक्तियां कौन कौन सी हैं। फिर पवित्रता की बात, पवित्रता भी एक खजाना है, तो इस खजाने को हमने कितना बढ़ाया है, कैसे हमारी पवित्रता दिन प्रतिदिन उसमें निखार आता जाए, कैसे उसमें शक्ति बढ़ती जाए, उसके लिए कौन कौन से अभ्यास करने जरूरी हैं। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, जैसे उस दिन बाबा ने परसों संडे की मुरली में बताया था, तीन प्रकार की लाइट देखी है ना, हृदय से ऊपर जा रही है, आधी जा रही है, पूरे शरीर में है, तो बहुत अच्छा हम विजन क्रिएट कर सकते हैं कि पवित्रता की के सागर की लाइट में मैं डूबी हुई आत्मा हूं, पूरी चारों तरफ हमारे लाइट ही लाइट है, और ना केवल हमारे प्रति बल्कि सबके शरीर को, अगर हम देखना है तो सबके शरीर को पवित्रता की लाइट में डूबे हुए देखना है, तो ही हम दूसरों को देखते हुए अविचलित रह सकते हैं, नहीं तो वृत्ति चंचल होती रहेगी। तो स्वयं जिस सम्मान में हम रहते हैं, जिस अभ्यास में हम रहते हैं, उसी अभ्यास में दूसरों को भी देखना है, भले सामने वाला अभ्यास कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमको उसी दृष्टि से देखना है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम स्वयं की दृष्टि को चेंज करेंगे, दूसरों की दृष्टि भी स्वतः चेंज होती जाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना, भले कोई काले कोयले भी जैसा है, कोयला तो काला ही होता है, तो कोयले जैसा भी है, लेकिन ना उसको भी क्या देखो, कोयले को क्या देखो, कोयले जैसे भी पीला ही देखो, उसको भी फरिश्ता देखो, बाबा ने मुरली में कहा था ना, उसको भी फरिश्ता देखो, भले कैसा भी है, और वास्तव में है तो फरिश्ता ही जाना, तो बाप पस कब कैसे जाना, सबको लौट के जाना ही है। तो उस तरीके से पवित्रता की शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। फिर एक पुरानी दुनिया को के आकर्षण से मुक्त होने का साधन है दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं, बाबा की दुआएं, और दुआएं जमा करने का साधन है बहुत सारी बातें हैं, सेवा, सबसे पहले मुख्य रूप से सेवा। तो हम दिल से सेवा करते हैं, सबसे पहले किसकी सेवा चाहिए, सबसे पहले स्वयं की सेवा, कि स्वयं की सेवा हम सही तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से करनी चाहिए। और सेवा के बारे में संडे की सैटरडे की मुरली में था एक प्रश्न की सेवा के लिए, फिर दुआएं जमा नहीं होगी, दो तीन बातें थी कि सेवा किसी से लेनी नहीं है, अगर सेवा लेते हैं तो जैसे यहां महारानी बन के बैठे हुए हैं, तो यहां महारानी बनेंगे तो बहानी बनेंगे, दासी बनेंगे, लेकिन कौन देखेगा दासी, ये फलाना ये दासी है, पहले ये था अब दासी बना लेकिन यहां सुख नहीं मिलेगा उसका। अगर हम किसी से यहाँ सेवा लेते हैं, हाँ लाचारी हालत में अलग बात है, अगर हम ठीक ठाक है और हमारे पास समय भी हमारे पास है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, फिर भी हम अगर सेवा ले रहे हैं तो वो सेवा भारी पड़ेगी, वो हमारे पुरुषार्थ को रोक देगी। एक तो हमको बददुआएं मिलेंगी और जिस आत्मा से हम दुआएं लेंगे वो संतुष्ट नहीं होगी, सूक्ष्म रूप से उसके मन खाता रहेगा, क्योंकि हमने उस आत्मा के ज्ञान योग का टाइम अगर खर्च कर दिया तो बहुत बड़ा पाप है ये भी। सही है ना? हाँ सही बात है। और एक खजाना है खुशी का खजाना, और एक खुशी कैसे मिलेगी, ये जितनी बातें पीछे की ना ये सब करेंगे तो खुशी मिल जाएगी, ये खुशी का साधन है। फिर नेक्स्ट है समय का खजाना, वास्तव में सब बातें समय भी उसमें आ जाएगा, इन सब बातों में समय को हमको सफल करना है, समय की स्मृति, कौन सा समय चल रहा है, तो समय को सफल करेंगे तो ये भी खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। और सेवा में एक और बात है, जितना हम सेवा करते जाएंगे उतना हम निरोगी बनेंगे, बाबा ने कहा ना उस दिन, नहीं तो अगर सेवा नहीं करते तो शरीर सड़ता जाएगा, कैसे, अगर फैशन करते रहते हैं, पाउडर लिपस्टिक नेल पॉलिश और मसाज वगैरह, उसी में पूरा दिन शरीर के ख्याल चलते रहते हैं, उसको खिलाने पिलाने में करते रहते हैं, हाँ ध्यान तो रखना है, कौन सा ध्यान, जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा कि ये हुसैन का घोड़ा है, इसको मैं नहलाता हूँ, हुसैन शब्द तो नहीं था लेकिन घोड़ा शब्द तो था, तो उसको नहलाता हूँ मैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के कैसे कैसे ख्याल चलते हैं, तो उस तरीके से अगर हम इस घोड़े का ध्यान रखें तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये हमारा घोड़ा ही ठीक नहीं है तो ऊपर सवार तो क्या करेगा, गिर जाएगा, घोड़ा गिरा देगा, उसको चोट लगेगी, चोट लगेगी तो फिर दुख होगा, दुख में कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। तो घुमा फिर आके तो बाबा को तो याद कर रहे, जैसे बाबा कहते हैं कि कहाँ डांस करो, बाथरूम में, क्यों, क्या कारण है उसका, क्योंकि वहां हड्डी टूटेगी, फ्रैक्चर होगा, फिर कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। तो याद किसी ना किसी तरीके, बाबा कई अनेक प्रकार की युक्तियां के घुमा फिरा कम को बाहीं पहुंचाना उसको, तो ये एक युक्तियां हैं। फिर है संतुष्टता का खजाना, संतुष्टता बहुत जरूरी है। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगा रहे, संतुष्टता का बोर्ड लगा रहे, कौन कौन सी संतुष्टता, स्वयं से संतुष्ट, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट, और परिवार से संतुष्ट, और बाबा से भी संतुष्ट। तो सब प्रकार की संतुष्टता जो है, चाहे स्थूल वस्तु है चाहे सूक्ष्म है, हर प्रकार के संतुष्टता रहनी है, और संतुष्टता के लिए त्याग वृत्ति बहुत जरूरी है। अगर हमारे में त्याग नहीं है तो दूसरे के संसाधनों को देख या फिर दूसरे के पुरुषार्थ को देख के भी हमको विचलित नहीं होना है, क्योंकि हर आत्मा अपनी अपनी क्षमता अनुसार कर रही है, लेकिन हमको दूसरे को देखकर हमको सीखना है, उसको देख के हमको डिसहार्टेड नहीं हो जाना है, क्योंकि हमारा जो पद है या हमारा जो मर्तबा है कोई छीन नहीं सकता उसको कोई भी, ये तो ड्रामा में बिल्कुल निश्चित है, लेकिन उस मर्तबे का सुख अभी है, मर्तबे का सुख वहां नहीं है, क्योंकि वहां तो वास्तव में वो चीज है ही नहीं है, पक्षपात की बात नहीं है, उस मर्तबे का सुख हमें आंतरिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति आत्मा अभी ही करेगी। तो हमको संतुष्टता का खजाना भी कहां तक हमने अपने भर के रखा है ये भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, तो इससे क्या होगा, पुरानी दुनिया के आकर्षण से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि संतुष्टता बहुत बड़ी पूंजी है, ये खजाना है, ये संसार की संतुष्टता और हमारी संतुष्टता में दिन रात का अंतर है। संसार में संतुष्ट कहाँ होते, जितना मर्जी कमा लो 99 के चक्कर में रहते हैं, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, और आखिर में वो लाखों करोड़ हो जाते हैं, वो शरीर छोड़ के चला जाता है, उसको वो भी खाने पीने को मिलते नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे पास संसाधन है जो भी है उनको हमको यूज करना है पुरुषार्थ के लिए, ताकि हमारा पुरुषार्थ उन साधनों के अनुसार भी बढ़ता रहे, हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये संतुष्टता भी एक चीज है। और सबसे जो पहला खजाना हमको रखना चाहिए, जो हमने बाद में रखा, कौन सा खजाना था, संकल्प का खजाना। तो संकल्पों को हमको दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो संकल्पों की भी हमारे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट चाहिए, बहुत खजाना चाहिए, हमारी झोली भरी रहनी चाहिए शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलेंगे, मुरली से मिलेंगे। जितना शुद्ध संकल्प हमारी बुद्धि में भरते जाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान योग सहज रूप से होता जाएगा। तो ये भी चीज थी। और कुछ एक अभ्यास करने हैं इस पुरानी दुनिया को भूलने के लिए, जैसे बताया अशरीरीपन का अभ्यास, बीज रूप अवस्था का अभ्यास, और एक और बहुत सहज बात है कि बाबा से रू रुआन करने की आदत, या बाबा को पत्थर लिखने की आदत। बाबा से जितना लंबे समय से हम रू रुआन करेंगे कि बाबा इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से मैं कैसे मुक्त हूँ, आप ही मुक्त कर सकते, पूरा सरेंडर हो जाने का, उसी के ऊपर थोप देने का, क्योंकि काम तो उसी का है, उसके बिना कौन करेगा हमको, कोई कर भी तो नहीं सकता है ना, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है ना, सरेंडर तो होना ही पड़ेगा। तो बाद में होने के बजाय पहले से सरेंडर हो जाओ, फायदा है, नहीं तो अंत में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि टाइम ही निकल जाएगा। तो बाद में कुछ भी स्वीकार करने, हाँ, जहां हमारा तन मन धन होगा, जितना हम स्थूल रूप से भी लगाते हैं तो हमारा मन भी स्वतः जाता है उसी तरफ जाता है और हमारा युग सहज होता जाता है। तो तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से जितने हम सेवा में व्यस्त रहते हैं और सम्मान देने की भावना, जैसे उस दिन बाबा ने टीचर बहन के लिए कहा ना, अगर टीचर को सम्मान देना है, सम्मान देना है टीचर को, सम्मान देना अर्थात बाप को सम्मान देना है। तो जो भी हम सेंटर में रहते हैं, जो भी हमको सेवा मिलती है, आंखें बंद करके कर देनी चाहिए। कहीं कहीं अगर हमको लगता है गलत है, ये कर देने का है, क्योंकि जो टीचर ने कहा वो भगवान की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। एक उसने कहा, उसकी आज्ञा सिर माथे है, उसकी नजर हमारे ऊपर है, उसने हमको चुना है, तो जरूर कोई विशेषताएं देखी होंगी, और अगर गलत भी है तो भी कोई हमारा हिसाब किताब रहा होगा, हमने भी कहीं किसी जन्म में उनसे गलत करवाया होगा तो वो भी हमारे से गलत करवा रहे हैं, हिसाब किताब तो पूरा होना ही है। तो हिसाब किताब, हाँ, बाबा ने बोला नहीं, लेकिन निमित्त को निमित्त, हाँ, तो बात तो सही है, माता जी बोल रहे, बात सही है। तो हिसाब किताब तो चुप तो होना ही है किसी न किसी तरीके से, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहां भी हम चले जाएं हिसाब किताब हमको छोड़ेगा नहीं। किसी भी गुफा में बैठ जाएं, लाखों करोड़ रुपए अगर हमको दे दिया जाए कि आपको कुछ भी नहीं करना, केवल साधना करनी है, नहीं होगी साधना उस बैठ के, हमको जहां है जिस स्थान पर है, बाबा ने कहा ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना वस्तु बदलेगी, तुमको ही बदलना है ना। और परिवार में पास तो सब में पास, इसलिए परिवार से पीठ नहीं करनी कभी की कि ये ऐसा है वैसा है, सबका पार्ट अपना अपना है, सभी अच्छे हैं, भगवान ने चुना है, भगवान की डिवाइन कॉल तो आ चुकी है वास्तव में, उसी के कारण तो हम इधर बैठे हुए हैं लेकिन एक महा डिवाइन कॉल आएगी जो हमको वापस ऊपर ही ले जाएगी सीधी तो उसका भी इंतजार करते रहना है और उसका भी अनुभव करते रहना है। तो ये कुछ एक बाबा के प्रश्न में फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको तो बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति क्या है? उत्तर था, सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। तो स्वयं को हमको ये होमवर्क करना है कि कौन कौन से अविनाशी खजाने हमारे पास हैं और उनके हम क्या मालिक बन के रहते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो उसका कारण क्या है, और जो बाप का खजाना ज्ञान सुख शांति आनंद है वह सर्व गुण हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है और नशे में सब भूल जाता है। तो ये नशा चढ़ाने के लिए हमको बार बार पीना पड़ेगा, जैसे बताया ना, केवल बताते हैं कि अगर हमको संसार में जो भी पियकड़ लोग होते हैं, शराबी लोग होते हैं, जिनको शराब का चस्का होता है, शराब ही उनका संसार है, शराब से प्यार होता है, तो वो अनेक प्रकार के ब्रांड उनके पास इकट्ठे होते हैं, उनको पता होता है कौन सी शराब में ज्यादा नशा है, कितने पैग पीने से नशा चढ़ेगा। तो यहां भी हमको बार बार पीनी पड़ेगी, कौन सी, ज्ञान की डिवाइन वाइन जिसको कहते हैं। तो ये बार बार हमको ज्ञान की तरफ हमारा मुख रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें या सुनाते रहें किसी को भी, लेकिन सुनाना देख के ही है, ऐसे नहीं सामने वाला सुनाने दो चार हमको अच्छी तरह सुना ही दे, हाँ, तो वो भी हमको सुन लेना है, लेकिन हाँ पात्र देके, अगर कोई बात नहीं, गलती से हम किसी को सुनाई देते हैं, नहीं समझ में आती, सामने वाले को हम परख ही नहीं सकते, तो पहले से तैयार रहना सुनने के लिए, अथॉरिटी से समझाओ। हाँ हाँ, वो तो सुनाना पड़ेगा, क्या पता कल को ना मिले। तो वास्तव में होता है, ये भी वास्तव में एक सही बात है, कई बार ऐसा भी होता है किसी को अगर सुनाते हैं और बाद में बोलता आपने हमको ये धारणा क्यों नहीं बताई हमको पहले, तो वो भी तो दोष चढ़ जाएगा ना, तो सुना देना चाहिए कुछ भी हो, क्योंकि समय नहीं है अभी तो, है ना। तो सामने वाले पात्र को देख के सुनाना है। तो नशे में सब भूल जाता है, तो ये ज्ञान का नशा हमें चढ़े रहना चाहिए। हाँ, कोई स्मृति नहीं, एक ही स्मृति रहे, मैं और बाप, बाप और मैं, इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा, निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। ओम शांति।